लुईस 16वां के स्वभाव से उसकी गद्दी पर बैठने के समय लोगों को बहुत आश्वासन मिल गया था। फ्रांस ने जब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की मदद की और जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका को इंग्लैंड के विरुद्ध विजय मिली तो सभी फ्रांसीसी गौरवान्वित हुए थे। लेकिन खुशियों का आधार अस्थायी नहीं था। राज्य का ऋण बढ़ता जा रहा था और उसका भुगतान कर पाना असंभव लग रहा था। लुई ने जब फ्रांसीसी अर्थशास्त्री और इतिहासकार तुर्जो को अपना मंत्री बनाया तो लगा कि समस्या का समाधान हो जाएगा। कार्यभार संभालते ही तुर्जो ने खाद्यान्न के व्यापार पर लगे प्रतिबंध हटा दिए। उसने विभिन्न व्यवसायों की शक्तिशाली संस्था गिल्ड को भी समाप्त कर दिया। उसने सड़कों की मरम्मत के निमित्त लिए जाने वाले बेगार को समाप्त कर एक सामान्य कर लगा दिया। तुर्जो ने 4 सूत्री कार्यक्रम रखा, ऋण नहीं, नए कर नहीं, दिवालियापन नहीं और राज्य के खर्च में कमी। इसे इंग्लिश में सुने, नो लोन्स नो टैक्सेस इटीसी। इसी पूरी तरह क्रियान्वित करने पर निश्चय ही हालात में सुधार होता। आंशिक रूप से सुधार होने पर भी स्थिति में स्थिरता आने लगी, लेकिन खर्चों में किसी प्रकार की कमी के लिए कोई तैयार नहीं था। उसके सुधारों ने विभिन्न लोगों को अलग अलग कारणों से असंतुष्ट कर दिया। तुर्जो की शिकायतें होने लगीं और उसे पद से हटना पड़ा। उसने स्वयं कहा कि यह फ्रांस के लिए विपत्ति है। घटनाओं ने इसे सत्य कर दिखाया। उसके बाद क्लियोनी नामक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी गई। उसने तुर्जो के कार्यक्रम को रद्द कर दिया। इसी समय अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और फ्रांस ने लाफायत के नेतृत्व में अपने परंपरागत शत्रु इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिका में मदद के लिए सेना भेज दी। यह अतिरिक्त भार संभाल पाना मुश्किल था, अतः क्लुनुई को हटना पड़ा। अब एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नेकर की नियुक्ति हुई। नेकर स्विट्जरलैंड का निवासी और प्रोटेस्टेंट था। ये दोनों ही बातें उसकी सफलता के मार्ग में अवरोध बन सकती थीं, लेकिन एक बैंकर परिवार का होने के कारण वह आर्थिक मामलों में दक्ष था। उसने ऋण न लेने की बात छोड़कर तुर्जो के अन्य सुझाव स्वीकार कर लिए। अमेरिकी युद्ध में जब अंग्रेज हारने लगे तो इसका श्रेय नेकर को मिला। कहा जाने लगा कि नेकर ईश्वर है। वह बिना कोई कर लगाए युद्ध लड़ रहा है। उसने राज्य का एक बजट बनाया। मनगढ़ंत आंकड़ों के सहारे यह सिद्ध किया कि हालत सुधरती जा रही है। तमाम गड़बड़ियों के बावजूद ये आंकड़े प्रकाशित होने पर प्रशंसित हुए। लोगों ने पहली बार यह जाना कि वास्तव में कराधान से राज्य को कितनी आमदनी होती है और राजा स्वयं के ऊपर कितना खर्च करता है। लेकिन नेकर की प्रतिभा ने वेरसाई के षड्यंत्रपूर्ण माहौल में इस्यालु लोगों की संख्या बढ़ा दी और लोग उसके विरुद्ध होने लगे। परिणामतः उसे भी अपने पद से हटना पड़ा। उसका उत्तराधिकारी फ्लरी एक साधारण और चापलूस व्यक्ति था। उसने हवा के साथ बहना शुरू किया। वह मारी आंतुआनेत के खर्च के लिए धन जुटाते रहा। परंतु यह स्थिति आखिर कब तक चलती? उसके स्थान पर कालोन को वित्त मंत्री बनाया गया। उसने अपना कार्य शुरू ही किया था कि एक अशोभनीय घटना हुई। फ्रांस के वरिष्ठ पादरियों में एक कार्डिनल रोहां बहुत भ्रष्ट था। उसे बताया गया कि रानी बहुत प्रसन्नता से उपहार स्वीकार करती है और वह एक कीमती उपहार रानी को भेंट करे तो राज परिवार से उसकी निकटता स्थापित हो जाएगी और उसे प्रतिष्ठा भी मिलेगा। वस्तुतः यह एक चाल थी जो उसे और रानी दोनों को एक साथ बदनाम कर देती। रोहा ने चुपके से उपहार देना चाहा, लेकिन उपहार विरोधियों को मिल गया और सरकार की बहुत बदनामी हुई। इसी बीच राजा और पेरिस की न्यायिक संस्था पार्लमा में मतभेद बढ़ता गया। आर्थिक स्थिति संभल नहीं रही थी। कालून ने राजा को सूचना दी कि राज्य दिवालियापन की ओर उन्मुख है और पूरे तंत्र में बिना कुछ मौलिक सुधार किए स्थिति नहीं संभल सकती। अंत में फ्रांस के सभी विशिष्ट लोगों की सभा बुलाने का निर्णय हुआ। विशिष्टों की सभा के पास कोई समाधान नहीं था। यह मात्र यह समाधान हो सकता था कि विशेषाधिकार संपन्न और कर मुक्त लोगों पर कर लगाया जाए, लेकिन विशिष्टों में अधिकांश वे लोग थे जो विशेषाधिकार संपन्न थे और वे कर देने को तैयार नहीं थे। कालोन और विशिष्टों की यह सभा का अधिवेशन दोनों ही बर्खास्त कर दिए गए। राजा ने अध्यादेशों के माध्यम से शासन करना चाहा। इसी समय पेरिस में पार्लमान ने अपने महत्व को स्थापित करने के लिए उन कानूनों को न केवल रजिस्टर करने से इनकार कर दिया, अपितु यह भी स्पष्ट किया कि केवल राज्य को ही स्टेट्स जनरल के माध्यम से नए कर लगाने का अधिकार है। जिन मौलिक कानूनों का प्रश्न पार्लमान में उठता था, अब उसे निश्चित रूप दे दिया गया। इसके अनुसार एक, राज्य कर लगाने का अधिकार स्टेट्स जनरल के माध्यम से व्यक्त करता है। दो, फ्रांस में मिलाए जाते समय विभिन्न प्रांतों की स्वायत्तता बरकरार थी और प्रांतीय पार्लमान के अधिकार भी अक्षुण्ण हैं। राजा जजों को बर्खास्त नहीं कर सकता। चार, गिरफ्तार होने पर व्यक्ति को न्यायालय के सामने याचिका प्रस्तुत करनी चाहिए और नियमित न्यायाधीश की अदालत में ही मुकदमे की सुनवाई होनी चाहिए। जब अधिकारियों ने बल प्रयोग करना चाहा तो रैन, तुलूज और बोर्दे नगर में प्रत्यक्ष विरोध प्रदर्शन हुआ। ग्रनोबल में तो पार्लमान ने विशेष अधिवेशन करके यह घोषणा कर दी कि राजा और उसके अधिकारियों की यह नीति गलत है और स्टेट्स जनरल का अधिवेशन तत्काल बुलाया जाना चाहिए। इस अधिवेशन में सामंत, पादरी और तृतीय वर्ग के प्रतिनिधि एक साथ शामिल थे। अब कठिनाई यह थी कि स्टेट्स जनरल का अंतिम अधिवेशन 1614 में हुआ था। रिसलू द्वारा स्टेट्स जनरल का उपयोग बंद कर दिए जाने से वह भी चली गई थी, लेकिन विकल्प क्या था? फ्रांस की जर्जर आर्थिक स्थिति और राज्य के दिवालियेपन से कैसे निपटा जाए, किसी के पास कोई निदान नहीं था। समस्या को निपटाने का एक ही तरीका था, प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन बुलाना। यह अपने में एक राज्य क्रांतिकारी घटना थी। राजा ने अपनी असमर्थता स्वीकार की और मैं ही राज्य हूँ कहने वाला का उत्तराधिकारी भी प्रतिनिधि सभा से समस्या का समाधान मांगने के लिए मजबूर हो गया। स्टेट्स जनरल की बात लोग भूल चुके थे। उसका स्वरूप, उसका संगठन, उसकी कार्यप्रणाली, चुनाव आदि कुछ भी ज्ञात नहीं था। ब्रेन ने इन विषयों पर शोध करने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त कर दी ताकि कुछ दिनों में यथास्थिति बनी रहे। जब उसे भी तत्काल सफलता नहीं मिली तो अंत में उसे भी हटा दिया गया। नेकर को फिर से आमंत्रित किया गया। स्टेट्स जनरल के चुनाव के लिए पादरी, सामंत और तृतीय वर्ग से अलग अलग प्रतिनिधि चुनने की पुरानी पद्धति अपनाई गई। हर व्यक्ति जो राज्य को कर देता हो या किसी विशेष कार्य में दक्ष हो मत दे सकता था। फ्रांस में बढ़ती हुई चेतना का प्रमाण यही था कि जो लोग चुने गए वे राजनीति समझते थे और टॉमसन के अनुसार उनके विचारों में सिद्धांतों की प्राथमिकता स्पष्ट थी। चुने गए सदस्य अपने अपने क्षेत्रों से मांग पत्रक तैयार करके लाए थे। टॉकविल ने इन पत्रकों का विशद अध्ययन करने के बाद लिखा है कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि 1789 में जनता क्या चाहती थी। इन्हें पुरातन व्यवस्था की अंतिम इच्छा और वसीयत कहा गया है। इसमें निरंकुशता की सामान्यता आलोचना और राष्ट्रीय संविधान की उपेक्षा की गई थी। इसका मत था कि स्टेट्स जनरल का अधिवेशन समय समय पर होना चाहिए और राजा को सलाह देने के साथ स्वतंत्रता की रक्षा का भी उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। इस पर ध्यान देकर राजा स्थिति संभाल सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चुनाव के साथ जनता में व्यापक जागरूकता आ गई थी। स्टेट्स जनरल के महत्व पर चर्चाएं हो रही थी। उसी समय आबे सीए ने एक पुस्तिका में इस प्रश्न को बहुत सरल ढंग से हल किया था। उसने लिखा था कि स्टेट्स जनरल क्या है? सब कुछ। उसका राजनीतिक जीवन में क्या महत्व है? कुछ नहीं। वह क्या चाहती है? थोड़ा महत्व। अब प्रश्न यह कि अधिवेशन कहाँ बुलाया जाए। नेकर ने सलाह दी कि पेरिस उपयुक्त होगा, लेकिन लुई और उसके निकट के लोग वेरसाई से बाहर आने को तैयार नहीं थे। वेरसाई में इतने लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी, फिर भी अधिवेशन वहीं बुलाया गया। 2 मई 1789 का बसंती का दिन बड़े समारोह के साथ लुई ने सदस्यों का स्वागत किया। उसका ख्याल था कि धूमधाम में ही लोग खो जाएंगे, परंतु समस्याएं शुरू से ही सिर उठाने लगीं। तृतीय वर्ग के प्रतिनिधियों के ठहरने की कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। कुछ लोगों को तो खाली किए गए अस्तबलों में रहना पड़ा। इसका पहला प्रभाव बहुत बुरा पड़ा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है कि स्टेट्स जनरल में मतदान की प्रणाली क्या होगी। परंपरा थी कि 3 वर्ग, पादरी, सामंत और तृतीय वर्ग के प्रतिनिधि अलग अलग सदनों में मत देते थे। इस तरह तीनों सदनों में से 2 सदन जो चाहते थे वही स्वीकृत होता था। इस प्रणाली से स्पष्ट होता है कि समान हित वाले पादरी और सामंत हमेशा एक ही साथ ही रहेंगे, इसलिए उनकी बात स्वीकृत होगी। तृतीय वर्ग ने इस पद्धति को मानने से इनकार कर दिया। उसने हर व्यक्ति को एक मत मानकर पूरे स्टेट्स जनरल के बहुमत के आधार पर निर्णय लेने का प्रस्ताव रखा। विशेषाधिकार संपन्न लोगों का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट हुआ। राजा को सलाह दी गई कि वह इसे स्वीकार न करे। इसी बीच छोटे पादरी, गरीब सामंत और इन दोनों वर्गों के प्रबुद्ध प्रतिनिधि तृतीय वर्ग का पक्ष लेकर उससे मिलने लगे। तृतीय वर्ग संगठित होने लगा। इनके अध्यक्ष ने विशेषाधिकार के विरुद्ध प्रस्ताव रखा। राजा के गुट ने व्यवधान डालने का निश्चय किया। जिस सभा भवन में अधिवेशन होता था उसे मरम्मत के बहाने बंद कर दिया गया, लेकिन उन्हें स्थिति का पता नहीं था। 20 जून को सभा भवन बंद पाकर प्रतिनिधियों ने पास के टेनिस मैदान में इकट्ठा होकर घोषणा की कि वे केवल तृतीय वर्ग के ही नहीं सारे राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं और एक अस्थायी विधान बनाए बिना नहीं मानेंगे। यह एक क्रांतिकारी घटना थी। फ्रांस में पहली बार एक संविधान सभा का स्वतः संगठन हो गया था। अब तक जो तृतीय वर्ग तिरस्कृत था वह संगठित और मुखर हो उठा। उसे अब प्रबुद्ध पादरियों और सामंतों का समर्थन भी प्राप्त हो गया। मजबूरन लुई ने मतदान के लिए एक ही सदन की प्रणाली और संविधान बनाने की बात मान ली। तृतीय वर्ग और क्रांति की यह पहली प्रमुख सफलता थी। एक राष्ट्रीय सभा का जन्म हुआ। इस सभा में मध्यमवर्गीय वर्ग के लोगों का प्रभाव सबसे अधिक था। कुंतलामा नामक लेखक ने बताया है कि फ्रांस की संपूर्ण प्रतिभा और शक्ति असेंबली में एकत्र हो गई थी। वेरसाई के पास पेरिस में भी तनाव बढ़ रहा था। स्टेट्स जनरल का अधिवेशन पेरिस में न बुलाए जाने से पेरिस के लोग क्षुब्ध हो गए। पिछले 2 वर्षों से अकाल की स्थिति के कारण बेरोजगार लोग पेरिस में इकट्ठा हो रहे थे। कारखानों के बंद होने के कारण मजदूर बेकार हो गए थे। इन भूखे नंगे लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा था। उन्होंने खुलेआम सड़कों पर इकट्ठा होकर अपनी बातें कहनी शुरू कर दी। 27 जून को इन लोगों ने कारखानों के मालिकों और व्यापारियों पर हमला कर दिया। काफ़ी लोग हताहत हुए और उन्हें सख्ती से दबा दिया गया। इस समय यात्रा पर आए आथर यंग ने फ्रांस छोड़ते समय लिखा कि क्रांति पूरी हो गई है, लेकिन यही तो शुरुआत थी। दंगे बढ़ते जा रहे थे। रोटी के दाम ही लोगों की मन स्थिति को जानने का माध्यम था। दाम बढ़ना स्वाभाविक था क्योंकि बाजार में गेहूं नहीं के बराबर था और महंगी रोटी से लोगों की उत्तेजना भड़कती थी। फलतः दंगे होते रहे। महल में कुछ सामंत मारी आंतुओनोत के और राजा के भाई आर्तुआ ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। वे किसी भी तरह स्टेट्स जनरल की सत्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। राजा भी उन्हीं की बातों में आ गया। नेकर को बर्खास्त कर दिया गया, जिसका पेरिस में विरोध हुआ। लोग यह समझने लगे कि राजा सख्ती बरतने जा रहा है और लोगों को हटा रहा है जो जनता का पक्ष ले रहे हैं। इसी बहाने लोग शस्त्र इकट्ठे करने लगे और क्रांति के नेतृत्वकर्ताओं ने लोगों को शस्त्रों से लैस रहने का आह्वान किया।